इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उनकी सेवा की और लक्ष्मण जी ने ये सब आस्तीर्ण बनाया, ये बिछौना उन्होंने ही बनाया था। ये रहा, ये वह इंगुदी वृक्ष है, यहां पर राम जी महाराज विराजमान हुए थे, यहां लक्ष्मण जी ने धनुष धारण किया था, यहां कवच पहन करके गंगा जी में जाने के लिए तैयार हुए थे, यहां उन्होंने बट का क्षीर मंगाया और यहां उन्होंने जटाएं बनाई थी। भरत जी महाराज बड़े गौर से उन स्थानों को देखने लगे। राम जी इस बिस्तर पर, इस घास फूस पर सोए थे। ओ दशरथ के बेटा होकर हजारों पुरुषों के मांगलिक गान के द्वारा जिनका जगाया जाना होता था और जो बड़े ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं वाले प्रासादों के अंदर विश्राम करते थे, जिनके विश्राम के लिए लोग तरसते थे कि अब विश्राम करें, अब विश्राम करें, और जिनके जगाने के लिए भी लोग हर प्रकार से तैयार रहते थे, वे दशरथ के पुत्र होकर यहाँ पर यदि विश्राम करते हैं तो भाई अब हमको तो इस बात के लिए अश्रद्धा हो गई कि संसार में धर्म नाम की कोई चीज होती है क्या। यदि धार्मिक पुरुषों के ऊपर आपत्ति आती है तो फिर धर्म के पालन का क्या अर्थ रहा, मुझे तो इस संसार से वैराग्य हो गया, न तो कोई माँ काम आएगी, न बाप काम आएंगे, न राज्य काम आएगा, न प्रतिष्ठा काम आएगी, न पद काम आएगा। जिसका जैसा भाग्य होता है वो भाग्य ही सब कुछ करता है। देखो दशरथ जी की पुत्र वधु होकर, जनक जी की पुत्री होकर और राम जी की पत्नी होकर और हम सब लोगों की मातृतुल्या होकर भी सीता यहां देखो घास फूस के ऊपर सोई है। निषाद राज, वनवास मिला था तो राम जी को मिला था, सीता जी को नहीं मिला था, लक्ष्मण जी को नहीं मिला था, पर इन्होंने जो दुख पाया है सीधी बात है कि ये तो एक भाग्य ही संसार में सबसे बड़ा है। लक्ष्मण के पास कोई शक्ति की कमी थी क्या? लक्ष्मण जी चाहते तो उनका पुरुषार्थ ऐसा था कि वो सबको युद्ध में परास्त कर सकते थे, परंतु भाग्य बड़ा है, उनको भाग्य के अंदर ठोकर खाने लिखी थी। ओहो यहाँ सीता सोई है, ये देखो सीता का रेशमी कपड़ा यहाँ कांटे में उलझ गया है, तो वो रेशम का तंतु इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। ओहो ये देखो सीता जी के चरणों का नूपुर है, कितना सुंदर है। उस नूपुर को लेकर उन्होंने सिर पर रखा। धन्य है लक्ष्मण, बड़ा धन्य है निषाद राज, हम लक्ष्मण की बड़ी महिमा गाते हैं, जिन्होंने राम का अनुवर्तन किया, जिनके भाग्य में जंगल लिखा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी वे राम जी के साथ इस वन में आए। हे सीते, संसार में संपत्तियां तो बहुतों को मिलेंगी लेकिन धर्म के लिए वन में जाना ये केवल तुम्हारे भाग्य में लिखा है, हमें मालूम नहीं था। हमको यदि मालूम होता तो हम भी राम जी के साथ रवाना हो जाते। राम के बिना, दशरथ के बिना ये अयोध्या एक एक केवट के बिना नौका के समान डगमगा रही है। हमारी अयोध्या जिसके दरवाजे एकदम खुले पड़े हैं, हमारी अयोध्या बड़ी सूनी हो गई है, लेकिन एक बात का आश्चर्य कि अभी भी कोई शत्रु अयोध्या को ललकारने के लिए नहीं आया, क्या बात? ओ ये तो हमारे पूर्वजों का प्रताप है, ये तो राम का प्रताप है कि कोई शत्रु अभी हमको ललकारने के लिए नहीं आया। यदि आवे तो भी क्या है, हमारा तो अयोध्या का दरवाजा खुला है, पर नहीं, कोई नहीं आया है। तस्याहम उत्तरं कालम निवत्स्यामि सुखम बने। ठीक है निषाद राज, ये तुम हमको ये आसन बता दो बड़ा अच्छा है, कारण कि इन्हीं पर आकर हम लोग अब विश्राम करेंगे, राम को तो हम अयोध्या भेज देंगे और बाकी समय में हम वनवास में आएंगे। वनवास तो बड़ा अच्छा है, शत्रु भी मेरे साथ आएगा, राम लक्ष्मण के साथ में अयोध्या रहेंगे, मेरे इस मनोरथ को देवता लोग सफल करें, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दें मुझे कि अयोध्या में राम जरूर जाएंगे, मैं उनके चरणों में गिरी जाऊंगा तो फिर वो करेंगे क्या, उनके पास में क्या गति है। अरे बड़े पुरुष तो बड़े पुरुष हृदय से बड़े कच्चे होते हैं, बड़े कच्चे। बड़े पुरुषों के पास रोने लग जाओ, बड़े पुरुषों के चरणों में गिर जाओ, बड़े पुरुष तो वहां पर छोटे की बात रखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से बातें होने लगी और प्रातःकाल हुआ। भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न जी निषादराज से कहो कि वो अपने चलने की तैयारी करे। शत्रुघ्न तुमको नींद आ गई? शत्रुघ्न का नहीं, नींद नहीं आ रही थी, तो आंख बंद थी ना? हाँ आंख बंद थी। क्या कर रहे थे? आंख बंद करके मैं रामलीला देख रहा था। राम जी की क्या क्या लीला हुई, कैसे भी वन से आए, कैसे गए होंगे, क्या कर रहे हैं, राम का चिंतन कर रहा था, सो नहीं रहा था। भरत जी ने फिर शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न अब अपने को आगे बहुत सोच समझ के चलना है, भरद्वाज ऋषि के वहां चलना है। निषाद राज ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, हमारे सब केवट लोग अपनी अच्छी अच्छी नौकाएं लेकर गंगा के किनारे उपस्थित हो चुके हैं, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आप जब भी आदेश देंगे, हमारे केवट लोग गंगा का ये विशाल तट है, इस विशाल प्रवाह है, इसे सब को भी पार कर देंगे। निषाद राज ने सभी लोगों को अपने निषादों को आदेश दिया कि हे निषादों, तुम्हारी नौका तैयार है? आवाज आई, हे महाराज हमारी नौकाएं अपनी जगह बिल्कुल तैयार है, क्या हम सेना को आदेश दें कि वो आपकी नौका से पार हो? स्वागत है, हम सब तैयार हैं। ये बात भरत जी ने भी अपने कानों से सुनी। 500 नौकाएं तैयार हैं और उनमें सैकड़ों सैकड़ों ये पतवार खेवट केवट ये भी तैयार है। एक स्वस्तिक आकार की नौका थी, ऐसी सुंदर स्वस्तिक आकार की नौका जिसमें कई जगह घंटियां लगी हुई और उसके ऊपर छाया का प्रबंध किया हुआ, बहुत सुंदर सजाई गई, जिसके ऊपर माला वगैरह भी लगाए हुए हैं। निषाद ने कहा कि महाराज एक मेरी प्रार्थना है, आप इस स्वस्तिक नाव में आप विराजमान हो। भरत जी ने कहा इसमें हमारे गुरुजी बैठे हैं, मेरी माताएं बैठे हैं, उसके बाद हम बैठेंगे। बहुत बड़ी नौका थी तो गुरुजन बैठ गए, माताएं बैठ गई और उसके बाद स्वयं भरत और शत्रुघ्न बैठ गए। ये सब बैठने के बाद बहुत लोगों को आदेश दिया कि जो लोग महावत है माना हाथी की सवारी करने वाले हैं, वे हाथी तो भाई गंगा में आराम से पार हो सकते हैं, और कई ऐसे घोड़े हैं जो घोड़े चंचल हैं, अपने पैरों को समेट करके पानी में प्रवाहित हो सकते हैं, वो घोड़ों पर बैठे बैठे पार हो जाए। कई ऐसे रथ हैं जिन रथों का चलना मुश्किल है, वो नौका के अंदर पटपटे लगा लगा करके और रथों को उधर उस पार कर ले रहे हैं। ऐसी सबको व्यवस्था बताई गई और उसी व्यवस्था के अनुसार सब लोग वहां अगले तीर के ऊपर उपस्थित होने लगे। उपस्थित होते होते वहां अरे समय हो चलो उपस्थित होकर वो आगे चले, आगे चलते चलते आगे प्रयागवन आया। प्रयागवन आने पर निषाद राज ने कहा कि अपनी सेना को यहां ठहरा दो, आगे भरद्वाज ऋषि हैं। अब भरद्वाज ऋषि को देखने के लिए हम लोग जाते हैं, भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं। आप लोग आश्रम से बहुत दूर रहना क्योंकि ऋषि मुनियों के आश्रमों से सेना जाने पर बाधित हो जाती है। हम लोग उनका दर्शन करेंगे और दर्शन करके हम वापिस आएंगे। इस प्रकार से सेना को भरद्वाज ऋषि से दूर एक पड़ाव में रख दिया और स्वयं पैरों से पैदल चल करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर वे जा रहे हैं। और इनके साथ में राम और ये राम ने रामानुज भरत शत्रुघ्न और वशिष्ठ जी निषाद राज इस प्रकार के श्रेष्ठ श्रेष्ठ सात आठ व्यक्ति ये साथ में जा रहे हैं और वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुंच चुके हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से लगभग एक कोस की दूरी पर भरत जी की सेना को स्थान दिया और भरत जी अपने साथ में वशिष्ठ जी को लेकर, मंत्रियों को लेकर, अपने पुरोहित को लेकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। वहां भरद्वाज ऋषि के शिष्यों में से कुछ एक शिष्यों को कहा गया कि हे ब्रह्मचारियों, आप लोग जाकर अपने गुरुदेव श्री भरद्वाज ऋषि से निवेदन करो कि अपने गुरु वशिष्ठ आदि के साथ अयोध्या का राजकुमार भरत आपके दर्शन करना चाहता है। उन शिष्यों ने जाकर अनेक ब्रह्मचारियों से घिरे हुए महाराज भरद्वाज ऋषि को निवेदन किया तो भरद्वाज ऋषि वही खड़े हो गए और अपने स्थान से अगवानी करने के लिए वे अपने आश्रम के द्वार के लिए प्रस्थान किए और इधर उन ब्रह्मचारियों ने जल्दी आकर वशिष्ठ सहित भरद्वाज ऋषि को आश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी। भरद्वाज ऋषि थोड़े से ही चले होंगे, इतने में ही भरत जी महाराज गुरुदेव के साथ में, वशिष्ठ ऋषि के साथ में भरद्वाज ऋषि के पास आए और वशिष्ठ जी और भरद्वाज ऋषि आपस में बहुत स्नेह से मिले और भरत जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वहां भरद्वाज ऋषि सब एक चौकी पर बैठ गए। भरद्वाज ऋषि ने सबका कुशल क्षेम पूछा, अयोध्या के विषय में पूछा, अयोध्या के राज्य कोष के विषय में पूछा। कभी वशिष्ठ जी और कभी भरत इन सब का उत्तर दे रहे थे। बड़ा सुंदर आश्रम था, वृक्ष की बड़ी अच्छी ठंडी छाया थी। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा कि हे भरत, आपका अभी आने का कारण क्या है? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है, कहीं कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम का अमंगल करने के लिए तो आप वन में नहीं आ रहे हो? तुम्हारे पिता ने तो कैकेयी के वश में होकर राम को वनवासी बना दिया और अब तुम राम को सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने के लिए कोई षड्यंत्र रच करके जंगल में तो नहीं जा रहे हो? भरद्वाज ऋषि की बात सुनकर के भरत जी ने उसी समय में अपना माथा अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा कि महाराज, आपने मुझे ये क्या कह दिया? आपने मेरे पर बहम कर लिया, मुझ पर बहम कर लिया, मैं तो मारा गया। महाराज, मैं और तो क्या कह सकता हूँ, सभी लोगों ने ऐसी आशंका की है जो आपने कहा है, परंतु आप और सभी लोग एक जैसे नहीं है। महाराज, आप त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, आपको सब पता है, हमारे हृदय की वृत्तियों का पता है, सब पता है, फिर भी आप मुझ पर दोष की दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे तो मेरे कोई दोष दिखा नहीं है, दोष है तो आप दूर कर दीजिए। नाहा मेते न तुष्टश्च न तद वचनम आददे, मेरी माता ने जो कुछ किया है वो माँ ने किया है, उसका मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने कभी माता के इन वचनों का आदर किया नहीं है। असल में मेरा तो राम के पास जाने का उद्देश्य यही है कि वे वापस अयोध्या में आवे और अयोध्या में आकर राजगद्दी पर विराजमान हो जाए। वशिष्ठादि ऋषियों के बीच में बैठे हुए भरद्वाज ऋषि कहने लगे कि देखो, तुमने बहुत अच्छा ये काम किया है। गुरु वृत्तिर दमश्चैव साधुनाम चानुयायिता, अब जरूरत नहीं है भाई, अब जरूरत नहीं है, अब तो इसको चला दो। तो हे नरश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार से ये कार्य किया है ये कार्य बहुत ठीक किया है। मैंने तो जो मेरे मन के संदेह की बात थी इसको बंद कर दो। मैंने मेरे जो संदेह की बात कही है उससे उसका भी ये कहने का तात्पर्य है, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं है, परंतु तुम्हारे अंदर ये भाव और दृढ़ बने, अर्थात राम के प्रति तुम्हारा आस्था का भाव और ज्यादा दृढ़ बने, इसलिए मैंने इतना कहा है। अपृच्छत्वम अपृच्छम त्वाम तवात्यर्थम, तुम्हारी कीर्ति ज्यादा बढ़े इसलिए मैंने ये बात कही है। तो मेरे आश्रम में इसीलिए आए हो मुझसे पूछने के लिए कि राम इस समय कहाँ है। तो राम सीता सहित लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक चित्रकूट पर्वत पर है, पर आज मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, आज तो तुमको यहीं पर रहना होगा और हमारा आतिथ्य तुमको स्वीकार करना होगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज नहीं, भरद्वाज ऋषि ने जब ये बात कही तो भरत ने कहा कि हे महाराज आपके आदेश का पालन हमको करना चाहिए। भरद्वाज ने कहा तो फिर तुम्हारी सेना पीछे क्यों छोड़ के आए, तुम्हारी सेना को अभी यहाँ पर उपस्थित करना चाहिए। भरत जी ने कहा कि महाराज सेना को इसलिए छोड़ा कि आपके आश्रम में कोई बाधा न पड़े, क्योंकि सेना में तरह तरह के पुरुष हैं, सेना में तरह तरह के पशु हैं, सेना में तरह तरह की बातें होती रहती है, आपके भजन में साधन में अग्निहोत्र में प्रवचन में बाधा न पड़े, इसलिए हमने सेना को पीछे छोड़ दिया। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आनीयताम, आप सेना को यहीं ले आओ और यहाँ लाकर हमारा आतिथ्य जो है उस सेना को प्रदान करो। भरत जी महाराज ने अपने सेना के लिए आज्ञा दी और सब सेना जो है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर आई। इतने में ही अब ध्यान से सुनना, भरद्वाज ऋषि अपने आश्रम के अंदर एक अग्निशाला थी जिसमें हरदम अग्नि प्रज्वलित रखते थे, उस अग्निशाला में जाकर बैठे। भरद्वाज ऋषि ने पावन संकल्प किए, अग्नि में आप आहुति दी। भरद्वाज ऋषि ने सबसे पहले विश्वकर्मा का आह्वान किया, विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा जी, मैं आज भरत की सेना का सत्कार करना चाहता हूं, आप तत्काल हमारे आतिथ्य में सम्मिलित होइए। उन्होंने त्वष्ट्रा का अभिवादन त्वष्ट्रा का संकल्प किया, उन्होंने लोकपालों का संकल्प किया, उन्होंने इंद्र आदि का संकल्प किया, देवताओं का संकल्प किया और नदियों का संकल्प किया, अंतरिक्ष के अंदर रहने वाले जो भूत प्रेत है उनका संकल्प किया, उन्होंने और भी संकल्प नदियों का संकल्प करके तरह तरह की वहां पर वस्तुओं की नदियां बहा दी। देखिए वहां पर ठंडा जल, मीठा दूध, अनेक प्रकार के फलों का रस, देवता गंधर्व विश्वावसु हु गंधर्व, इन सब को बुला करके तरह तरह का वहां पर प्रबंध करवाया है। घृताची अप्सरा, विश्वाची अप्सरा और मिश्र केसी अप्सरा, अलम्बुषा अप्सरा, ये चार अप्सराएं और नागदंता और हेमा, ये छह अप्सराएं। इन अप्सराओं को बुला करके कहा कि तुम अपनी सेना, तुम अपने सखियों के साथ में सबके नाच गान के द्वारा सबका मनोरंजन करो। और इंद्र को कहा, ब्रह्मा जी को कहा, तुम्बुरु को कहा कि आप अपना दिव्य वन है वो यहाँ पर वन भेज दो। तो वहाँ पर तरह तरह के वन उपस्थित हो गए। वहाँ संकल्प करने मात्र से बहुत बड़े खाने पीने वस्तुओं का ढेर लग गया। वहाँ पर चूसने वाली वस्तु, लेय वस्तु, भोज्य वस्तु, भक्ष्य वस्तु, इन वस्तुओं का ढेर लग गया। विचित्र विचित्र प्रकार के फल फूल और मालाएं पुष्प उनका वहाँ पर ढेर लग गया। पके हुए फल थे और कई फल ऐसे जो छिले हुए थे जिनका भीतर का भाग था वो सब वहाँ पर उपस्थित हो गया। इस प्रकार से समाधि के द्वारा महाराज ने सब कुछ कर लिया। फिर पूर्व की ओर ध्यान लगा करके एक एक देवताओं को उन्होंने याद करके मलय दर्दुर इन सब ऐसी वायु चलवाई, माने मलय देश की वायु दर्दुर वायु, ऐसी वायु जिनके अंदर चंदन की सुगंध आती हो, ऐसी वायु ठंडी ठंडी वायु वहां पर चलने लगी मानो सबके पंखा हो रहा हो। उस वायु से सब लोगों के पसीने सूख गए और वहां पर बैठ करके उनको सबका आनंद का अनुभव हुआ। फिर वहां पर बदल ही बदल छा गए, खूब बदल छा गए और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और अप्सरा लोग नाचने लगे। देवता गंधर्व वीणा लेकर के तरह तरह के स्वर छोड़ने लगे। उस भाई देखो, एक तो सुगंधित वायु, एक फूलों की अच्छी वर्षा और एक वहां पर जो है ये देवता गंधर्व वगैरह स्वर छोड़े और कोई नाचे, तो सबका मन जो है आनंद में डूब गया। उस समय में विश्वकर्मा के विधान को भरत जी की सेना ने देखा कि कितने बड़े बड़े मकान देखते देखते ही बन गए। ऐसे मकान बने जिनमें मणियों के खंभे जड़े हुए थे। उन मकानों के अंदर तरह तरह की चीजें रखी हुई थी। देखते देखते ही वहां पर आम के, बिल के और कपित्थ के, पनस के वृक्ष उग गए और उत्तर पूर्व देश से बड़े दिव्य दिव्य वहां पर उपभोग पदार्थ आ गए। नदियां वहां पर बहने लगी और चतुशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिना, चार चार शाला वाले कई मकान बन गए और हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए अलग बाड़े बन गए। ऊंचे ऊंचे सतमंजिले मकान उस समय बन गए। बदलों को छूने वाले मकान बन गए। एक बड़ा सुंदर राजगृह बनाया गया जिसको चारों तरफ से मालाओं से सजाया है, जिसमें बड़ी दिव्य सुगंध है और जिसमें एक बहुत बढ़िया सिंहासन बनाया हुआ है। उसमें खाने पीने का अलग से प्रबंध है। वहाँ पर स्वरतंत्र से बड़ी सुंदर आवाजें आ रही है। ऐसा वो महल है। उस महल के अंदर भरत जी को भेजा गया और वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन बना हुआ था। देखे भरत इस सिंहासन पर बैठते हैं क्या, इस बात की परीक्षा हो रही थी। भरत जी महाराज उस महल में जाकर जब उस सिंहासन के पास पहुँचे तो उन्होंने उस सिंहासन के ऊपर जो है माला रख दी। सिंहासन को पूज करके इस सिंहासन के ऊपर राम जी महाराज विराजमान है ऐसा मन से उन्होंने ध्यान किया और स्वयं सेवकों के बीच में जाकर अर्थात सचिवों के साथ में बैठ गए। इससे सब लोगों के मन पर बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा और थोड़ी देर के अंदर खूब वहां पर दूध ही दूध हो गया। भरद्वाज ऋषि के शासन से भरत जी के सेना के अंदर खाने पीने की किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। वहां पर ब्रह्मा जी ने 20,000 ऐसी स्त्रियों को भेजा जिनके आभूषण सारे शरीर पर लदे हुए थे और जो भोजन की तैयारी कर रहे थे। कुबेर ने भी 20,000 ऐसी स्त्रियों को भेजा कि जिनके सोने के आभूषण मणियों से जड़े हुए थे और नंदनवन की अप्सराओं को भेजा गया कि जिन्होंने 20,000 की संख्या में आकर वहाँ पर पुरुषों की खूब सेवा की, सब वस्तुओं से उनकी सेवा की, सब प्रकार के वहाँ पर सेवा से भरत जी महाराज की सेना को सब प्रकार के परिश्रम से मुक्त कर दिया। भरत जी महाराज के आगे आगे गंधर्व लोग अपने वाद्य यंत्र लेकर के बड़े मीठे स्वर में गाने बजाने लगे। वहाँ पर बहुत से नाचने भी लगे। भरद्वाज के शासन से वहाँ क्या नहीं हुआ, चैत्र रथ वन का सारा आनंद वहाँ आ गया और बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, अश्वत्थ वृक्ष है, विभीतक माने बहेड़े का वृक्ष है और बिल्व का वृक्ष है, ये सब वहाँ पर उपस्थित थे और कई कई ऐसे सेवक हुए कि जो कुब्ज होकर के, कुबड़े होकर के और वामन बन करके रनिवास में जाकर सबकी सेवा कर रहे थे। और प्रमदा विग्रहम कृत्वा, मालती है, मल्लिका है, इस जाति के और भी कई वृक्ष और लताएं, माने स्त्री लताएं और स्त्री जाति के वृक्ष, ये सब वहाँ पर स्त्री का रूप, साक्षात स्त्री का रूप बना करके भरद्वाज ऋषि में आश्रम में आए। उनकी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने सब स्त्रियों ने मिलकर उन सेना उन सेना सैनिकों को कोई दूध पिला रहे हैं, कोई उनको और वस्तु पिला रहे हैं, कोई उनको फल दे रहे हैं, कोई भोजन मीठा भोजन दे रहे हैं। किन्हीं को कोई पसंद आता है तो आता है, किसी को नहीं आता तो नहीं आता है। एक एक पुरुष के पास में सेवा के लिए सात सात आठ आठ स्त्रियां थी स्नान कराने के लिए। हो अब कहते हैं सात आठ कैसे स्नान कराए, तो एक स्त्री तो जल डालती थी और एक स्त्री उनके सारे सिर को जो है मल मल करके साफ कर रही थी, एक एक हाथ साफ कर रही थी, एक दूसरा हाथ साफ कर रही थी, एक पीठ को जो है साफ कर रही थी, एक उसके जो है पेट को साफ कर रही थी, एक उसके पैर को साफ कर रही, एक दूसरे पैर को साफ, ऐसे करके शरीर के सात हिस्से और एक दिन जल डाल रही थी। इस प्रकार से इनकी सेवा हो रही थी। गरम गरम जल उपस्थित किया गया, गरम जल से नहाने वालों के लिए गरम जल था और ठंडे जल के लिए ठंडा जल था। वहाँ पर घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए, ऊंटों के लिए, गधों के लिए, गौओं के लिए और दूसरों के लिए सब प्रकार के भोजन प्रबंध किए गए थे। वहाँ पर मधु धारा थी, वहाँ पर इक्षु रस था और वहाँ पर जो है तरह तरह के और पदार्थ, पेय पदार्थ सबके सामने उपस्थित किए थे। ओहो, सारी सेना इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, वे सब कहने लगे नैव अयोध्याम गमिष्याम है, अयोध्या अयोध्या जाने की जरूरत ही नहीं है और न गमिष्याम है दंड का, न राम जी के उधर जाने की जरूरत है, क्यों दुख पाए, यही बहुत अच्छा है। कुशलम भरतस्यास्तु, भरत का बड़ा कुशल मंगल हो कि देखो हमको आज कैसी कैसी सेवा शुश्रूषा मिली है, ये भरत की कृपा से मिली है तो भरत जाने, राम जी की कृपा से मिली है तो राम जी जाने, ये राम और भरत की बात भरत जाने, हम तो बस यही खाएं पिए और मस्त पड़े रहे, यही बस हम तो चाहते हैं। इति पादात योधाश्च हस्त्याश्वरः बन्धकः, इस प्रकार से हाथी घोड़े सारे पशु सब जो है बड़े प्रसन्न हो गए और ये वाणी फिर बोलने लगे कि ओहो स्वर्गो यम, हमने अपने जीवन में कभी स्वर्ग देखा नहीं था, हमारे तो खाने पीने का सब प्रबंध हो गया, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, अब इसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता है। जहाँ जाओ वहाँ पर नाच गान हो रहा है, कहीं गा रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, सब दूर दूर तक एक बहुत बड़ा कोई मेला सा लग गया हो और उसमें अन्न था वो अमृत के समान बड़ा मीठा अन्न, क्या बताएं, वहाँ दास दासियों की संख्या जो सेवा करने वाली, ओहो वहाँ पर नौकर चाकर दासियां और सैनिकों के वहाँ पर और उस छोटे सैनिकों की सेवा करने वाले, कोई बर्तन मांझ रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, इतना ही नहीं कोई वो नहाता है तो नहाने के बाद में भाई काजल लगावे तो काजल उपस्थित कर देवे, कोई कंघा लगाए तो कंघा उनके सामने उपस्थित कर देवे, कोई कांच रखे तो उसका मुंह दिखा दे, कांच वहाँ पर जगह जगह कांच रख दिए गए, देखो भाई अपना मुंह जैसा भी है तुम कांच में देखो, और वहाँ पर उन वृक्षों के लिए ऐसी शक्ति देनी कि उन वृक्षों से चाहे जितना दूध ही दूध टपकता है। खाने पीने की जितनी सामग्री थी उन सब सामग्रियों के अंदर सोने ही सोने के बर्तन थे, सोने के बर्तनों में सबने भोजन किया। बबूर वन पार्श्वेशु कूपा पायस कर्दमा, सब जो कुवे थे वहाँ खोदे हुए उन कुओं के अंदर दूध ही दूध भरा हुआ था और जो बड़े बड़े ये वाक्य माने बावड़ियां थी उन बावड़ियों के अंदर बहुत अच्छा अच्छा फलों का रस भरा हुआ था। अब उन बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा उन रसों को बाहर निकाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टोप है, उन टोपों के अंदर खाली किया जा रहा है और फिर जो है वो पीने वालों के सामने उपस्थित किया जा रहा है। स्थाल्य है, कुंभ्य है, करम्भ्यश्च दधि पूर्णा सुसंस्कृता, बहुत बड़े बड़े मटके जिनके अंदर दही भरा हुआ है, केनी के अंदर मट्ठा भरा हुआ है और कई तालाब के तालाब छाछ से भरे हुए हैं। इस प्रकार से भाई सब सामग्री वहाँ पर पड़ी है। एक तरफ जाओ तो दातुनों का ढेर लगा हुआ है, दंत धावन संचयान, और कहीं पर जाओ चंदन का ढेर लगा हुआ है, कहीं इत्र है इत्र ही इत्र लगा हुआ है और कहीं सुगंधित तेल है। इस प्रकार से भाई सब सामग्री उन लोगों की उनके पास में है। उन सामग्रियों को सब लोगों ने देखा कि देखा भरद्वाज ऋषि के यहाँ तो बड़ा ठाट बाट है, और अब वो जो पशु जो खा रहे हैं उन पशुओं के जो रहने की जगह है वहां पर जो खंभे हैं उनके अंदर मणियां जड़ी हुई, बताओ पशुओं के रहने की जगह में मणियां जड़ी हुई, और उनको जो मृदुन यवस संचयान ऐसा मीठा घास है, जो घास खाते 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 उनको तृप्ति नहीं हुई, इतना मीठा घास उनको मिल रहा है, पशु भी बड़े आनंदित हो रहे हैं, और वो पशु खा करके और जोर जोर से वो डकार ले रहे हैं, वो सब लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। इस प्रकार से सब लोग वहाँ खाए पिए और रात भर खर्राटा भर भर करके खूब सोए वो, और सोने के बाद फिर वो जगे तो भाई जितनी सिद्धियां आई थी सबने दशरथ जी महाराज को नहीं भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया और सबकी सब सिद्धियां समाप्त।